ओम शांति। 15 दिसंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। बना बनाया अनादि ड्रामा, मतलब इसको कभी भी हम बिगनिंग नहीं कह सकते कि इस डेट को ये नाटक शुरू हुआ। बाकी दुनिया के जितने भी नाटक हैं उनका आरंभ है और अंत भी है, परंतु इस नाटक का आरंभ और अंत नहीं। क्यों? आप कोई फिल्म देखने जाओ, कोई नाटक देखने जाओ, उसका आरंभ होता है भी 3 बजे शुरू हुआ है तो 6 बजे खत्म हो जाएगा, 6 बजे शुरू हुआ है तो 9 बजे खत्म हो जाएगा। परंतु ये नाटक ऐसा है जो कभी भी खत्म नहीं होता। परंतु वो नाटक जैसे 3 घंटे का है, आपने एक बार देख लिया, फिर उसमें से 15 मिनट 20 मिनट तो आधा घंटा ब्रेक लगता है, एक जने कुछ लोग सिनेमा हॉल से निकलेंगे, फिर दूसरे आएंगे और फिर उसके बाद वो शुरू करेंगे। तो नाटक है जी, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो, एकदम जैसे घड़ी की सुई है, 1 घंटा खत्म होते ही बिना ब्रेक के 2रा घंटा शुरू, बिना ब्रेक के 3रा घंटा शुरू, 4था घंटा शुरू, 5वां घंटा शुरू, 12 घंटे हो गए तो फिर अगला घंटा शुरू, मतलब ये रुकता नहीं। आपकी बनी हुई घड़ी भी रुक जाएगी, आपके हाथ में बंधी हुई घड़ी रुक जाएगी, सेल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, कोई कारण हो जाएगा तो वो रुक जाएगी, और वो घड़ी बनी है तो चलना शुरू किया है। परंतु ये एक ऐसी घड़ी है,
बाबा की घड़ी भी बंद नहीं होती, लेकिन उसमें भी स्टॉपेज है, वो भी 24 घंटा नहीं बोलता है, वो भी टाइम के अनुसार ही बोलता है।
नहीं, बाबा तो एक एक्टर है ना, बाबा तो एक एक्टर है, वो भी सिर्फ पूरे 5000 साल में सिर्फ 100 साल के लिए पार्ट बजाने के लिए आता है, परंतु ड्रामा इसलिए बाबा कहते नहीं, मेरे भी नहीं, ध्यान दीजिए, ड्रामा सिर्फ बाबा नहीं है, ड्रामा में हम सारे संसार की आत्माएं एक्टर है, हम मैं एक्टर हूं, आप एक्टर हैं, बाबा एक्टर है, एक एक चीज, एक एक रेत का कण, रास्ते में पड़ी हुई छोटी सी रोड़ी, वो भी एक्टर है,
वो भी वहीं पर मिले 5000 साल।
हाँ, वो वहीं पर मिले, हाँ जी, कोई उठा के लाए या ना लाए, जैसे वहां पहुंची है वैसे पहुंचेगी। खैर, को समझने का नहीं समझ में आ रही किसी को तो कोई बात नहीं, क्योंकि समझ में आएगी। जैसे कि आपने मान लीजिए कि एक रोड़ी को आज ठोकर मारी है, 5000 साल पहले भी उस समय वही ठोकर आप उसको मारेंगे, और जहां आप छोड़ के जाएंगे, उसके बाद कोई और आएगा, उसको जो ठोकर मारेगा या उठाकर ले जाएगा, जो कुछ भी करेगा वो वही करना है। तो हर 5000 साल बाद ठीक उसी समय वो कोरोना आएगा, वही कोरोना का छोटा सा जो दिखाई नहीं देता आंखों से, परंतु वो वापस उसको जाके उसी टाइम पर उसी प्रकार से बीमार करेगा। मतलब ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि ये 5000 साल बाद ऑटोमेटिक हूबहू रिपीट होता है। ये ऑटोमेटिक शब्द का हिंदी में अर्थ है बना बनाया, बना बनाया का मतलब है ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक अंग्रेजी का शब्द है, और हिंदी में इसका अर्थ है बना बनाया, ऑटोमेटिक का अर्थ। और तीसरा उर्दू में इसका शब्द है कुदरत, ऑटोमेटिक। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। आपने इसी कुर्सी पर बैठना है, उस भाई ने उस कुर्सी पर बैठना है, उस भाई ने उस कुर्सी पर बैठना है, जो जिस जिस कुर्सी पर, जिस सोफे पर, नीचे पट पर, जहां जो बैठा है वो ठीक 5000 साल बाद उन्हीं कपड़ों में उसी समय आकर वैसे ही बैठेगा।
ऐसी बात
मोक्ष किसको भी नहीं मिल सकता, मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। आपस में एक दूसरे से करेंगे तो जस्ट झगड़ा खड़ा होता है। वाई, क्यों एक दूसरे को कहें? कॉमन बात है, कॉमन है सबके लिए, मतलब एक्ट फिक्स है, हर एक आत्मा की एक्ट फिक्स है। मोक्ष किसको भी नहीं मिल सकता, मिल सकता है?
नहीं
मिल सकता किसी को भी, छोटे से छोटे किसी भी चीज को मोक्ष नहीं मिल सकता। ये बात हमें बुद्धि में रखना है। प्रश्न, शिव बाबा अशरीरी है, वे शरीर में किस लिए आते हैं, कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं? शिव बाबा अशरीरी है, शरीर में किस लिए आते हैं, कौन सा काम करते हैं, कौन सा नहीं? कितने प्रश्न हो गए, इनको ध्यान से देखो। उत्तर, बाबा कहते बच्चे मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूं। सिर्फ मुरली सुनाने आते, मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूं, मैं खाने पीने के लिए नहीं आता, मैं खाने पीने के लिए नहीं आता। हाँ जी, नहीं खाते। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने के लिए, मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने के लिए, बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है, इनकी आत्मा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा लेती है, मैं नहीं लेता स्वाद। स्वाद इनकी आत्मा लेती है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा लेती है, शिव बाबा टेस्ट नहीं करते, खट्टा है, मीठा है, नमक है, नहीं है, कोई मतलब नहीं।
किसके लगाते?
बाबा ने ये कालवाली मुरली में भी आया था, ध्यान से देखते रहे तो मुरलियों में आता है, ये रीति रिवाज है, रसम रिवाज है, बाकी मैं खाता नहीं। और आपको बताया था पहले भी कि दादी बैठी है, भोग लगाया जाता है, शिव बाबा कहते मैं नहीं खाता हूं, और गुलजार दादी तो होती नहीं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा है, केला गुलजार दादी बिल्कुल नहीं खाती थी, केला गुलजार दादी नहीं खाती थी, यदि उसे दो तो वो नहीं खाती है, परंतु उस समय गुलजार दादी तो है ही नहीं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा है। अब शिव बाबा खाते नहीं, ब्रह्मा बाबा खाते हैं, परंतु ब्रह्मा बाबा का वो शरीर नहीं, उस समय केला खिलाया गया भोग में, अब वो केला किसने खाया? दादी खाती नहीं है केला, तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने खाया, तो शरीर किसका गया? दादी का। टेस्ट किसने लिया? ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने, और गया किसके पेट में? दादी के पेट। ठीक है, तो ये आपने बहुत ध्यान से समझना है कि ये जो भोग लगाने के लिए बाबा कहते हैं, भोग लगाने का रसम रिवाज है, भक्ति मार्ग का चला आ रहा है, क्योंकि नए नए भगत आते हैं। ब्रह्मा बाबा की आत्मा टेस्ट लेगी, परंतु खाएगी तो पेट तो किसके में जाएगा?
दादी
के में जाएगा। अब उस टाइम यदि कोई, हाँ जी, मुंह का भी दादी का रहेगा, मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि क्या प्रोसीजर है। परमात्मा, परमात्मा टेस्ट भी नहीं लेते, परमात्मा टेस्ट भी नहीं लेते हैं। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन आ जा रे इस धरती पर। ओम शांति। गीत बजाए ही वे जाते हैं जिसमें अपना तैलुक है। ऐसे हम कोई भी गीत उठाकर नहीं रख बजाते, जिन जिन पर समझाया जा सके वही गीत बजाते हैं। आकाश में कोई तख्त नहीं है। अब ये गीत चले तो बाबा समझाए ना, बाबा कहते हो आकाश में कोई तख्त नहीं रखा, कोई कुर्सी नहीं रखी कि मैं जिसके ऊपर बैठा हुआ हूं, ठीक है ना, कोई सीट या बिस्तरा कुछ नहीं है, मतलब जहां पर मैं आराम से बैठा रहता हूं और मुझे बुलाया जा रहा हो कि नीचे आ जा रहे। आकाश में कोई तख्त नहीं है। आकाश इस पोलार को कहा जाता है, जो खाली है इसको आकाश कहा जाता है। बाकी आकाश तत्व में तो तख्त है नहीं, ना परमपिता परमात्मा इस आकाश में तख्त पर रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम परमपिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माएं हैं दोनों, मैं परमात्मा और तुम आत्माएं, हम दोनों इस सूर्य चांद सितारों से उस पार रहते। सूर्य चांद सितारों से उस पार रहते हैं, उसको मूल वतन कहा जाता है। जैसे यहां आकाश में सूर्य चांद सितारे हैं, वैसे हूबहू झाड़ के मुआफिक महातत्व भी में भी आत्माएं रहती हैं। महातत्व में, महातत्व ब्रह्म महातत्व, छठा महातत्व, जहां छठा महातत्व जब कहा जाता है इसका मतलब होता है, जैसे अब ये हमने कोई भी चीज रखी है, ठीक है ना, डब्बा रखा है या मोबाइल है या लैपटॉप है या कुर्सी है या आप और हम है, तो जहां आप और हम हैं वहां आकाश नहीं है, बाकी जगह आकाश है। तो जहां कोई दूसरा तत्व आ जाता है तो वहां आकाश नहीं होता, वहां आकाश नहीं होता। आकाश की जगह पर क्या आ गया, चाहे वो पानी आया हो, चाहे वह वायु आई हो, चाहे वहां क्या बोलते हैं आग आई हो, चाहे वहां पृथ्वी आई हो, बाकी चारों तत्वों में से कोई तत्व आ जाएगा तो वहां आकाश नहीं होगा। समझ गए बात?
आकाश। अब इसमें चंद्रमा
आ गया तो जितनी जगह पर चंद्रमा या जितनी जगह पर सूरज है तो वहां उसको आकाश नहीं कहेंगे। ये टिकने का आधार है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व का आकर्षण। ये चुंबक देखते हैं आप, चुंबक देखिए ना आपने, अरे भाई देखिए यार क्यों फालतू में, नहीं ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण चुंबक, चुंबक जो है क्या होती है कि उसके अंदर एक आकर्षण होता है कि वो लोहे को खींचती है, और ये चुंबक के अंदर दो सिरे होते हैं, एक उत्तरी सिरा एक दक्षिणी सिरा। तो जब हम उत्तरी सिरे को, दो चुंबक ले लें, हम उत्तरी सिरे को उत्तरी सिरे के साथ मिलाएंगे तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे, वो चिपकेंगे नहीं। ये चुंबक के अंदर एक विशेषता है कि दोनों के दो पोल होते हैं, एक पोल को कहते हैं नॉर्थ पोल, एक को कहते हैं साउथ पोल। हमने नॉर्थ पोल उत्तरी पोल को उत्तरी पोल के साथ मिलाया, वो चिपकेंगे नहीं, वो और ही धक्का देंगे, दूर भागो। और जब हम एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है उसको मिलाएंगे तो वो चिपक जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो है ना, इसको चुंबक कहते हैं, यही हर एक चीज में है। गुरुत्वाकर्षण हर एक चीज में है, धरती के अंदर भी एक चुंबक है जिसके द्वारा हम सीधे खड़े रहते हैं। हम हाथ पैरों के जरिए हम ऊपर उड़े तो हम ऊपर से सीधे ही नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये हमें खींच रही है पृथ्वी, हम इस पृथ्वी पर इसलिए चिपके हुए हैं कि पृथ्वी ने हमें खींचा हुआ है। तो हर एक चीज, हर एक के अंदर अपना एक चुंबक है, जिस चुंबक के कारण वो एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब दो चुंबकों के बीच में कोई एक चीज आ जाए और इधर भी बराबर दूरी पर हो, यदि एक है तो वो खींच लेगी, अब एक नहीं है तो अब इधर भी चुंबक है, इधर भी, ये भी खींचेगी, ये भी खींचेगी, तो ये बीच वाला कहां जाएगा, ना इधर जा सकता और ना इधर जा सकता, तो बीच में ही खड़ा रहेगा। आप यदि उसको उठाएंगे तो ये इसके एक मूर्ति, एक मंदिर बना हुआ है ना, उसमें यही किया गया कि इधर भी एक चुंबक लगा दिया, इधर भी एक चुंबक लगा दिया, नीचे भी एक चुंबक लगा दिया, ऊपर भी एक चुंबक लगा दिया, अब वो मूर्ति बीच में टिक गई। बोले जी कैसे खड़ी है ये, समझ गए बात को? तो इस प्रकार से उस मूर्ति को बिल्कुल अधर खड़ा कर दिया और अब उसको जो है ना, ना तो इधर गिर सकती है, ना इधर जा सकती है, ना इधर, और हर तरफ से चुंबक खड़ा कर दिया, तो मूर्ति वहीं के वहीं रुक गई। ऐसे ही ये सारे के सारे ग्रह उपग्रह अपने अंदर चुंबक है और सब ऐसे चुंबक के द्वारा खींचे हुए हैं कि वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, और अब ये घूमते हैं तो वो भी एक चुंबक के आधार होता है, जिसके आधार पर वो उसी चक्कर में ही घूमते रहते हैं, मतलब और कहीं भी नहीं घूम सकते, अपने घेरे से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये चुंबक होती है, चुंबक के आधार पर वो खींचे रहते हैं। तो आकाश पर खड़े हैं, कोई चीज पर आधार नहीं, ये आकाश पर खड़े हैं, कोई चीज पर आधार नहीं, पर तो जहां वो है वहां आकाश नहीं है। तो जो असली बात समझने वाली है, ब्रह्म महातत्व जहां है वहां आकाश नहीं है। छठा महातत्व है ना, वो भी एक छठी चीज है, वो भी जहां होती है वहां आकाश नहीं होता। तो इसलिए बाबा कहते मैं वहां रहता हूं जहां आकाश नहीं है, मीन्स वो है ब्रह्म महातत्व। अब ब्रह्म महातत्व कहां हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। जहां ब्रह्म महातत्व है वहां आत्मा है, वहां परम आत्मा, ठीक है क्या? छठा महातत्व जैसे कोई भी चीज कहीं भी होगी वहां पर वो होगा। बहुत अच्छी तरह से ये समझने वाली बात है, ठीक है क्या? अहम आत्माएं, हम आत्माएं और परमात्मा बाप, हम सब रहने वाले महातत्व में हैं। हम सब कहां रहते हैं, हम आत्माएं भी और हम आत्माओं का बाप भी कहां रहता है, हाँ ब्रह्म महातत्व में, याद रखना है उसका नाम ब्रह्म महातत्व, जहां हम आत्माएं रहती हैं और हम आत्माओं का पिता परमात्मा रहता है। ये एक ऐसी फ्रीजिंग स्टेज है जहां कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसे फ्रिज में कोई चीज रख दो वहां कोई भी खराब नहीं होता, तो फिर भी दुनिया वाले फ्रिज में वो खराब हो जाएगा, परंतु ये एक ऐसा ब्रह्म महातत्व है जहां आत्मा जितना समय रहे कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए हम आत्माओं को बाबा कहते जब आप इस चक्र में आ जाते हैं तो आप इन पांच तत्वों के घेरे में रहते हैं, मैं कभी भी इन पांच तत्वों के घेरे में नहीं रहता हूं। चाहे आप आत्माएं शरीर छोड़ देती हैं तब भी आप आकाश तत्व में रहती हैं। आकाश तत्व में सूक्ष्म वतन है, आकाश तत्व में क्या है, सूक्ष्म वतन है, और सूक्ष्म वतन वो स्टेज है जब आत्मा अपने आप को इस शरीर के प्रभाव से अलग हल्का महसूस करती है, परंतु वो ब्रह्ममय तत्व नहीं है, क्योंकि उसके संकल्प चलते हैं, उसके संकल्प चलते हैं, संकल्प चल रहे हैं तो सूक्ष्म वतन है, संकल्प नहीं चल रहे हैं तो परम अवस्था है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, अब ये तो समझाया है, जब जब भीड़ पड़ती है दुख होता है तब आता, जब भीड़ पड़ती है दुख होता है तो बाबा कहते मैं आता हूं। पुराने को नया बनाने, जरूर पुराने में ही भीड़ होती है, कलयुग में है दुख की भीड़, स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। स्वर्ग में क्या है? सुख ही सुख है। फिर से मुझे आकर सहज ज्ञान और सहज राज योग सिख लाना होता है। सब बुलाते हैं कि आओ, कृष्ण के लिए नहीं कहते कि सिंहासन छोड़कर आ जाओ, मेरे को कहते हैं आ जाओ। पर तो कृष्ण को ये नहीं कहेंगे कि तू ऊपर बैठा है, गाय के पास बैठा है, कहीं बैठा है, आ जाओ। उसे समझते हैं कृष्ण तो इसी धरती पर रहने वाला है, उसे सिंहासन से नहीं बुलाएंगे, उसे कोई परम धाम से नहीं बुलाएंगे। और उन्हें ये समझते हैं कि कृष्ण तो इस धरती पर आया तो वैकुंठ भी इसी धरती पर होता है, स्वर्ग भी इसी धरती पर होता है। कृष्ण के लिए सिंहासन अक्षर शोभता नहीं, वो तो राजकुमार था। सिंहासन तब कहें जबकि राजगद्दी मिले, जबकि राजगद्दी मिले। कृष्ण को तो राजगद्दी मिलती नहीं, राजगद्दी मिलती है तो वो बन जाता है नारायण, वो बन जाता है नारायण। हाँ, छोटे बच्चे को बाप गोद में व सिंहासन पर बाजू में बिठा सकता है, परंतु वो महाराजा नहीं कहलाएगा, वो प्रिंस है, प्रिंस महाराजा नहीं कहलाएगा। और जब वो महाराजा बनेगा तब वो सिंहासन पर बैठेगा। महाराजा बनेगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, कृष्ण का नाम क्या हो जाएगा? नारायण हो जाएगा। तो बाप समझाते हैं आत्माएं मूल वतन में कैसे रहती हैं, स्टार मिसल, कैसे रहती हैं, स्टार मिसल, जैसे तारे, जैसे ये तारे खड़े हैं ऐसे ही हम आत्माएं भी छठा ब्रह्म महातत्व में ऐसे स्टार के मुआफिक रहती हैं। हम किसी को एक दूसरे को चिपकते नहीं, एक दूसरे से अलग रहते हैं, एक दूसरे को छूते नहीं और बीच में आकाश भी नहीं। ये ध्यान रखना है, बीच में आकाश भी नहीं। क्या होता है? वो एक ही ब्रह्म तत्व है, वो प्रकाश ही प्रकाश है। मतलब छूने का मतलब कोई चीज बीच में है ही नहीं। बेशक हम एक दूसरे के पास है, कितने क्लोज है, क्योंकि हम आत्माओं का साइज जीरो, हम आत्माओं के पिता परमात्मा का साइज भी जीरो और परम धाम का साइज भी जीरो, क्योंकि तीनों ब्रह्म महातत्व हैं। और हम तीनों आकाश या पांचों तत्वों के प्रभाव से क्या हैं? मुक्त हैं। ये यथार्थ अपने आप को अनुभव करना है। फिर वहां से नंबर वार आती रहती हैं, दिखाते हैं न स्टार कैसे गिरते हैं। वहां से भी आत्माएं आकर सीधा गर्भ में आती है। जैसे देखते हैं ना, ऊपर से स्टार गिरता है फटाफट फटाफट, नीचे आता जाता है, चमकता जाता है, ऐसे उनको तो फिर इतनी देर तक दिखाई देते हैं, परंतु आत्मा इतना तीखा रॉकेट है कि आत्माएं एक गर्भ को, एक शरीर को छोड़ा, आत्माएं आकर सीधा गर्भ में जाती है। ये अच्छी रीति नोट करो कि हर एक आत्मा को सत्तो रजो तमो से पास करना है, चाहे वो सतयुग में आए, चाहे त्रेता में आए, चाहे द्वापर में आए, चाहे कलयुग में आए। जब भी आत्मा परम धाम से आएगी उसे इन चारों अवस्थाओं में से गुजरना है, सतो प्रधान, सतो रजो और तमो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, होता है, महसूस होता है, दिखाई नहीं देता है। महसूस कैसे होता है कि माँ को महसूस होता है आज मेरे पेट में कुछ हलचल हुई। जब आत्मा प्रवेश करती है तभी हलचल शुरू होती है, इससे पहले कोई हलचल नहीं होती।
प्रवेश होने का भी उसको नहीं पता है, सांस के जरिए होती है या मुंह के जरिए होती है,
उसे किसी भी रास्ते की जरूरत नहीं, वो सीधी इधर से आएगी तो इधर घुस जाएगी, पीछे से आएगी तो घुस जाएगी, कई एक सेकंड से पहले उसने शरीर छोड़ना भी है और उसमें हाँ, तो उसे उसे कोई दरवाजे का इंतजार थोड़ा करना है कि कहाँ से घुसूं। उसने तो सीधा, उसको पता है, उसके अंदर निश्चित है, उसने सीधा वहीं जाकर के बैठ जाना है, ठीक है ना। हाँ, ये वो स्ट्राइक है जो भारत ने किया, पाकिस्तान में गए भी और बम चला के आ भी गए, कोई रास्ता नहीं, कोई रडार, कोई पकड़ नहीं सकता उसको। ऐसे ही मतलब ये इसको क्या बोलते हैं, कौन से स्ट्राइक बोलते हैं, ठीक है नहीं, जो भी हो मतलब स्ट्राइक किया, इसको नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, तो वो जो स्ट्राइक किया यहाँ से गए भी सही और वहां मारा भी सही, उस जगह को खत्म भी कर दिया, नामो निशान मिटा दिया और वापस आ गए हैं। नहीं नहीं, पाकिस्तान में एक उस स्ट्राइक का नाम मेरे को एकदम हट गया, कोई बात नहीं। तो आप समझे कि आपको मेन बात समझने वाली है कि आत्मा को किसी भी रास्ते की जरूरत नहीं, शरीर छोड़ते वक्त भी, शरीर में प्रवेश करते वक्त भी, आत्मा यहाँ से सीधी चली जाए, यहाँ से चली जाए, यहाँ से चली जाए, यहाँ से चली जाए, कहीं से भी चली जाए, उसको कोई देखने की जरूरत नहीं है। पहले कहते थे नाक से निकल गई, मुंह से निकल गई, दांत से निकल गई, आंख फाटी फाटी रह गई, ऐसा इसका कोई मतलब, आत्मा को निकलने वो आखिरी काम हो जाता है, किसी न किसी का कोई ना कोई आखिरी कार्य होगा, बाथरूम निकल जाएगा, लैट्रिन निकल जाएगी, तो कहेंगे तो नर्क से गया, और ऊपर से आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया तो बोले जी मुंह से गया जी, सांस आखिरी में आंखें होके कोई फर्क नहीं पड़ा तो नाक से गया है, तो मतलब ऐसे अंदाजे लगाते रहते थे, पर तो अब इस प्रकार का कोई अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं। जैसे पहले लक्ष्मी नारायण आएंगे तो उनको सत्व रजो अवस्था से पास होते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते फिर तमो प्रधान अवस्था को पाना है, हर एक को ऐसे सबको वापस जा नहीं सकते। इब्राहिम बुद्ध आते हैं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है। द्वापर में धर्म स्थापक आते हैं, वहां से पुनर्जन्म शुरू होता है, फिर तमो प्रधान बनना है। अब उनकी सदगति कौन करे, सदगति दाता तो एक ही शिव है, चाहे कोई द्वापर में आवे, चाहे कोई कलयुग में आवे, तो चाहे कोई सतयुग में आवे। कहते हैं सबकी सदगति करना करने मुझे आना पड़ता है, मेरे जैसा काम और कोई कर नहीं सकता, जो काम मैं करता हूं मेरा कोई बच्चा नहीं कर सकता, और जो काम मेरे बच्चे करते हैं वो मैं नहीं करता। ये लाइन बहुत अच्छी तरह डिवाइडिंग लाइन याद रखनी है। मैं देवी देवता धर्म भी स्थापन करता हूँ, तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ, गति और सदगति दाता मैं हूँ, गति दोनों, गति भी और सदगति भी दाता तो मैं हूँ। जब तुम प्योर बन जाते हो तो फिर मैं तुमको वापस ले जाता हूँ, तुम्हारी भी सदगति करता हूँ, तुम्हारी भी सदगति करता हूँ। तुम्हारे साथ जो अनेक धर्म वाले हैं उन धर्म स्थापकों सहित सबका उद्धार करता हूँ, तुमको ज्ञान से श्रृंगार कर स्वर्ग का माके मालिक लक्ष्मी अथवा नारायण, लक्ष्मी या नारायण कुछ ना कुछ तो बनेंगे ना, बना लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने लायक बनाता हूँ। अब ये वरने लायक बनाना और लक्ष्मी नारायण बनाने में क्या अंतर होगा, बात सिर्फ सिंपल, कोई अंतर ज्यादा नहीं है, मतलब वरने लायक भी आप लक्ष्मी बन गए हो तो आप नारायण को वरेंगे, आप नारायण बने हैं तो लक्ष्मी को वरेंगे। और दूसरा होता है वरने लायक होना, मतलब जिसको आप प्राप्त कर सके, आप लक्ष्मी का पद प्राप्त करें या नारायण का पद प्राप्त करें, हैं जी,
उसकी भी काबिलियत होनी चाहिए।
हाँ, मतलब जो आप काबिलियत लेंगे, आपने जो भी तैयारी की है उसके आधार पर आप लक्ष्मी बनेंगे या नारायण बनेंगे, तो जैसी आपके अंदर योग्यता होगी वो पद आपको मिल जाएगा। दो पद है, आत्मा तो वही है, आत्मा चाहे नारायण बने तो चाहे वो लक्ष्मी बने, परंतु उसके अंदर वो गुण वो कर्मों का अकाउंट होना चाहिए। फिर तुमको वापस ले जाता हूँ, सबको पहले मुक्ति धाम भेज देता हूँ, अब भेज देता हूं तो वैसे लगता है जैसे इकट्ठे करके फिर उनको बताया चलो अब मुक्ति धाम में। अब ये हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं और हमें समझाया जा रहा है कि अब तुम्हें घर चलना है, सबको पता लग गया। फिर सबको पता लग गया तो सब सब कहां जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। बाकी वहां आत्माएं निकाल करके कहीं रोक करके नहीं कहता अच्छा जी अब मुक्ति धाम चलो, वो तो फिर जाना ही जाना है मुक्ति धाम में। सबको पहले मुक्ति धाम भेज देता हूं और सबको सदगति दाता भी हूं। दूसरे धर्म स्थापक तो आते हैं वो सदगति नहीं करते, वो किसी को भी सदगति नहीं देते, वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर उनकी वृद्धि करने लग पड़ते। बस वो जो नियम बना देते हैं उन नियमों पर उनको चलाते हैं और वो नियम भी धीरे 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 उनके जीवन से गिरते जाते हैं और वो धर्म सतो रजो तमो से होते हुए एकदम पतित हो जाते हैं। अब सभी धर्म पतित हो गए हैं, सभी धर्म तमो प्रधान हो गए हैं, सभी धर्म अधर्म बन गए हैं। और जब सारे धर्म अधर्म बन जाते हैं अब इनको पावन सतो प्रधान कौन बनाए, कौन बनाए? तो बाप खुद बैठ बच्चों को समझाते हैं, भगवान आकर सबकी सदगति भी करते हैं। इसलिए भारत को स्वर्ग भी बनाते हैं, जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाते हैं। इसलिए बाप की इतनी महिमा है क्योंकि वो आकर हमें नरक से स्वर्ग के लायक बनाते हैं। गीता है सर्व शास्त्र मय शिरोमणि, और वो भी कौन सी गीता, जो गीता अब शिव बाबा आकर सुना रहे हैं। परंतु वो गीता कृष्ण वाली नहीं, वो सबकी माँ बाप नहीं है। कल भी हमने चर्चा की थी क्योंकि उस गीता में गीता तो वो गीता तो बाद में लिखी गई, जो वेद पहले लिखे गए थे उनके श्लोक भी उसके अंदर हैं और उनके श्लोकों को आगे पुराणों में भी लिया गया है, परंतु कृष्ण का नाम लिख दिया है। भगवान को भूल गए हैं, भगवान तो सबका सदगति दाता है, इसलिए गीता सब धर्म वालों का के लिए धर्म शास्त्र है। ये वाली गीता सबको इसे मानना पड़े, सदगति का शास्त्र और कोई है नहीं। क्यों कहा उस गीता का चक्कर क्यों पड़ा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी किताबें हैं, किसी भी ग्रंथ के अंदर ये नहीं लिखा, चाहे वो कुरान हो चाहे वो बाइबल हो, तो चाहे किसी भी धर्म का कोई भी ग्रंथ हो, भगवानोवाच सिर्फ एक ये छोटी सी किताब है जिसमें भगवानोवाच व्यास ने लिख दिया है। तो इसलिए बाबा इसको पकड़ रहे हैं कि भगवानोवाच ये नहीं है। बाबा का कहने का मतलब है कि ये जो गीता दुनिया में लिखी गई है जिसमें भगवानोवाच लिखा है ये सच्ची गीता नहीं है। अब किसी किताब में लिख दो भगवानोवाच, भगवानोवाच सुना होगा, लिखा किसने, व्यास ने। व्यास ने कब सुना भगवान को बोलते हुए, कहां सुना, और फिर वो भगवान कहां है, क्या है? व्यास खुद भगवान को नहीं जानता तो क्या उसने सुना और क्या उसने लिखा। हमसे कोई पूछे भगवान से सुना, हम कह सकते हैं कि हाँ हमने भगवान से सुना, हमने भगवान को इन आंखों से अनुभव किया। भगवान स्वयं परम धाम से आकर कैसे पढ़ाता है यह हमने अनुभव किया। सबका सबको इसे मानना पड़े, सदगति का शास्त्र और कोई है ही नहीं। दुनिया में कोई किताब नहीं जो किसी को सदगति कर सकती हो, गति कर सकती हो। चाहे दुनिया वाली गीता कितनी बार पढ़ ली हमने, मैंने मुंह जुबानी याद कर ली थी कभी वो समय था, परंतु क्या फायदा मिला, कोई मुक्ति मिली या कोई जीवन मुक्ति मिली, कुछ भी नहीं मिला। सदगति का शास्त्र और कोई है नहीं, सदगति देने वाला है ही एक, उनकी ही गीता है। तुम बच्चों को सदगति का ज्ञान दे रहे हैं। गीता में शिव का नाम होता तो सब धर्म वालों का ये शास्त्र होता। यदि उस गीता में शिव का नाम होता, है ही नहीं। अब कहते हम लिख देते हैं कृष्ण की जगह शिव नाम, परंतु तो भी वो सब धर्मों का शास्त्र नहीं होता, हो सकता। बाप सबको कहते हैं क्योंकि वो सच है ही नहीं। उस गीता में आटे में नमक जितना सच है। अपने को आत्मा समझ, मेरे साथ योग लगाओ तो विकार विनाश होंगे और तो मेरे धाम में आ जाएंगे। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला भी मैं हूँ। बाकी तो आते ही हैं अपने धर्म स्थापन करने। मनुष्य कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? बाप कहते नहीं, जो भी सब आत्माएं सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है, किसकी एक्ट बदल नहीं सकती। हर एक को की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है। हर एक आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, ड्रामा 5000 साल का है। एक्यूरेट हर एक ने अपने अपने टाइम पर अपना अपना पार्ट बजाने आना है और ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। ड्रामा अनादि है, उसका आदि मध्य अंत नहीं। न आदि है, न मध्य है, न अंत है। सृष्टि की आदि सतयुग को कहा जाता है और अंत कलयुग को कहा जाता है, बाकी ड्रामा का आदि अंत नहीं। सृष्टि के एक चक्र का आरंभ और अंत है, परंतु सृष्टि का आरंभ और अंत नहीं। जैसे रात और दिन 12-12 घंटे के हैं, परंतु कब से चलते आ रहे हैं? रात से पहले दिन, दिन से पहले रात। हाँ, रात से पहले दिन, दिन से पहले रात। तो पहले क्या था? रात कहेंगे तो उससे पहले दिन था, दिन कहेंगे तो उससे पहले रात थी। मतलब कभी भी पहले क्या था ये नहीं कह सकते कि दिन था या रात था, क्योंकि एक चक्र में है। जैसे 12 पहले बजते हैं कि 1 पहले बजता है, ऐसे ही ना 12 से पहले, मतलब 12 से पहले कभी 12 घंटे पहले 1 बजा होगा ना, तभी तो 12 पर पहुंचे। तो 12 के बाद 1 बजेगा, 12 से पहले भी 1 बजा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, हाँ एक्यूरेट है। ड्रामा कब बना ये नहीं कह सकते, ये प्रश्न उठ नहीं सकता। बाबा ने समझाया है कि और जो भी शास्त्र हैं, उनसे हर एक ने आकर अपना धर्म स्थापन किया, सदगति नहीं की। उन्होंने तो धर्म स्थापन किया, उनके पीछे वृद्धि होती गई। कितनी कितनी गुह्य पॉइंट्स हैं, ऐसे मतलब निबंध लिखने जैसे हैं। ये गपोरों की बातें नहीं है, हार जीत का ये ड्रामा है। सत्युग में परमात्मा को याद करने की दरकार ही नहीं। सत्युग में परमात्मा को याद करने की, परमात्मा को याद करे तो फिर ये बातें भी समझे कि हम ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला रचने वाला कौन है। तुमको तो सन्मुख बतलाते हैं कि मैं रचता हूँ, ये ब्राह्मणों की नई दुनिया है संगम की। चोटी को तो कोई नहीं जानते, विराट रूप बनाते हैं, उसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों को भूल गए हैं, सतयुग में देवता है, कलयुग में शूद्र। संगम युगी ब्राह्मणों को जानते नहीं, ये राज बाप आकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता बिगर कभी धारणा नहीं हो सकती। बाबा समझाते हैं कितने ढेर वेद शास्त्र हैं, परिक्रमा दिलाते हैं, मंदिरों से चित्र निकाल परिक्रमा दिलाए फिर वापस मंदिर में ले आते हैं। बाबा अनुभवी हैं, शास्त्रों से गाड़ी भरकर परिक्रमा देते हैं, ऐसे ही फिर देवताओं के चित्र भी गाड़ी में रख परिक्रमा दिलाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। तुम हो शिव शक्तियां, तुम सारे विश्व की सदगति करती हो, परंतु ये कोई जानते नहीं कि दिलवाड़ा मंदिर हु बहु इन्हों का यादगार है। ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। जगदम्बा है, शिव बाबा भी है, शक्तियों का चबूतरा भी बना हुआ है। भक्ति मार्ग में फिर से ऐसे मंदिर बनेंगे, फिर विनाश होगा तो ये सब खत्म हो जाएंगे। कितने क्लियर बोला है, ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर 5000 साल बाद बनेंगे, चाहे वो माउंट आबू हो तो चाहे कोई भी हो, सब खत्म हो जाएंगे और फिर से उसी प्रकार उसी समय बनेंगे। सतयुग में कोई मंदिर होता नहीं, ये सब भक्त भक्ति का विस्तार है। ज्ञान में तो चुप रहना है, एक शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को भूल और कोई को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होना है। मनुष्य मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, राम राम कहो, परंतु ऐसे याद आता ही नहीं, राम राम याद आता ही नहीं, फिर भी गाया जाता है अंत काल जो नारायण सिमरे। नहीं फिर क्यों बने, फिर तो देवता बनेगा, उसकी मुक्ति जीवन मुक्ति हो जाएगी। यदि वो किसी संसार के व्यक्ति को या देह के संबंधियों को याद करेगा तो फिर उसके मोह में उसके पास जाएगा। बात अभी की है, बम्भोर को आग लगी, आग तो लगनी है सारे संसार को। अंत काल जो नारायण सिमरे उसको भी मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी। बरोबर अब तुम समझते हो हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे, नारायण और लक्ष्मी को वरेंगे स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। बाबा बिगर ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता। ये बाबा भी कहते हैं कि अब हमको शिव बाबा ने बताया है, इनको शक्ति सेना व पांडव सेना कहा जाता है। पांडव नाम है महारथियों पर, शक्तियों की फिर शेर पर सवारी दिखाते हैं। तो बाप कहते हैं जैसे कल्प पहले सहज राजयोग सिखाया था हू बहु इसी प्रकार सिखा रहा हूँ। जो भी एक्ट चलती है कल्प कल्प वही चलेगी, इनमें फर्क नहीं पड़ सकता, फिर कल्प कल्प ये पाठ चलेगा। बाबा कहते हैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ, पीछे क्या होने वाला है सो तो फिर पीछे सुनाएंगे ना। अब भी सब सुना दूं तो क्या बस वापस चला जाऊं, कल सुनाने आऊं कि नहीं आऊं, अनर्थ है ना। अंत तक नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे, मैं सुनाता रहूंगा तुम सुनते रहेंगे। हम गीता की महिमा बहुत करते हैं परंतु उस गीता व महाभारत में तो हिंसक लड़ाई आदि दिखा दी है, अब लड़ाई तो है नहीं। अब कृष्ण आए तो लड़ाई थोड़ा कराएगा, भगवान आएगा वो लड़ाई थोड़ा करवाएगा। तुम्हारी तो है योग बल की बात, अहिंसा का अर्थ कोई भी नहीं जानते, सिर्फ स्त्री को नरक का द्वार कह दिया है। वास्तव में नरक का द्वार तो दोनों है, चाहे वो पुरुष हो तो चाहे वो स्त्री हो। अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाए, अब वो स्वर्ग का द्वार कैसे बने, अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाए। वे तो भगवान की ही ताकत है, ये गीत बाबा ने बनाए बनवाए हैं, फिर बनाने वालों ने कोई ना कोई ने ठीक बनाया है, कोई ने रॉन्ग बनाया है, कोई ने ठीक बनाया है, कोई ने रॉन्ग बनाया है, मिक्स कर दिया है। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मन से दूर नहीं, ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए हैं बाबा के। तो यहाँ की बातें और है, गौशाला भी है, वनवास भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते। हमने किसको भगाया क्या, किसको कभी कहा था कि कराची में चले आना। बाबा ने कहा मैंने किसी को भी नहीं कहा कि कराची में चले आना, पूछो इन शक्तियों से। ये ड्रामा में पार्ट था, जिन पर सितम हुए तो चले आए। तो राइट क्या है, ये बाप बैठ बतलाते हैं। शास्त्रों में तो जो लिखा है वो है भक्ति मार्ग, उनसे तो मेरे से मिल नहीं सकते, मेरे पास आ नहीं सकते, मुझे तो गाइड बन यहाँ आना पड़ता है। कहते हैं ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी ना हो, मतलब ये तो ब्रह्मा बाबा तो गृहस्थी है, उसका तन क्यों नहीं लिया। अरे मुझे तो गृहस्थी के तन में ही आकर उनको ज्ञान देना है, उनके ही 84 जन्म बताता हूँ। तो कितनी गुहे बातें हैं, ये नए धर्म के लिए नई बातें, ये नए धर्म के लिए नई बातें हैं, ज्ञान भी नया है। बाप कहते हैं कल्प कल्प मैं आता हूँ, मैं कहाँ आता हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर यही ज्ञान जो हर 5000 साल बाद सुनाता हूँ वही हू बहु आकर सुनाता हूँ। और कोई ऐसे कभी नहीं कह सकता, और कोई कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं कल्प कल्प आकर धर्म की क्या करता हूँ, स्थापना करता हूँ, ऐसे कोई भी नहीं कहेगा। लक्ष्मी नारायण दोनों नहीं कहेंगे कि हम फिर से रजाई करने आए हैं, ना लक्ष्मी कहेगी और ना ही नारायण कहेगा कि हम फिर से रजाई करने के लिए आए हैं। वहां ये ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है, वहां ये ज्ञान ही क्या होता है, प्राय लोप हो जाता है। शास्त्र तो बाद में अनेक बना दिए हैं, बाद में अनेक शास्त्र बना दिए हैं, हम ब्राह्मणों के लिए एक ही गीता है, हम ब्राह्मणों के लिए क्या है, एक ही गीता है और कोई शास्त्र नहीं है। धर्म भी स्थापन करता हूँ और सदगति भी सबकी करता हूँ, डबल काम हुआ ना। अब हम जो सुनाते हैं वो राइट है या उन्हों का राइट है, बाबा पूछ रहे हैं, जो मैं सुनाता हूँ वो राइट है या दुनिया वाले सुनाते हैं ये राइट है। सो तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं ट्रुथ हूँ, मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूँ, भल इसने पढ़े तो बहुत है परंतु ये सुनाते थोड़े ही है, ये तो शिव बाबा नई बातें सुनाते हैं, वे तो अशरीरी है, सिर्फ ये मुरली सुनाने का काम करने आते, मैं तो अशरीरी हूँ, मैं तो सिर्फ मुरली सुनाने का काम करने आता हूँ, न खाने पीने आते हैं, मैं तो आया ही हूँ तुम बच्चों को फिर से राजधानी देने, स्वाद इनकी आत्मा लेती है, टेस्ट कौन करती है, इनकी आत्मा लेती है। हर एक का धर्म अलग है, उन्हें अपने धर्म शास्त्र पढ़ना है, यहाँ तो ढेर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, सारा कुछ भी नहीं, सार कुछ भी नहीं, निचोड़ मतलब चाहे कितने शास्त्र पढ़ लो पर तो कुछ समझ में नहीं आता, जितना पढ़ते रहते हैं असार संसार रहता होता है, तमो प्रधान बनना ही है। पहले पहले सृष्टि में तुम आए हो, तुम ब्राह्मणों ने माता पिता से जन्म लिया है, उस तरफ है आसुरी कुटुंब, यहाँ है ईश्वरीय कुटुंब, फिर जाकर देवी गोद लेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे, माता पिता की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे, बाकी रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। बाप कहते हैं बच्चे विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे, ऐसे थोड़े ही शादी नहीं करेंगे तो कमजोर रह जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर वे कितने मोटे तंदुरुस्त रहते हैं, यहाँ तो ब्रेन का काम है, दिमाग का काम है, मेहनत है। दधीची ऋषि का मिसाल है ना, सन्यासियों को तो बहुत माल मिलता है, सन्यासियों को तो बहुत माल मिलता है, बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे, यहाँ तो बहुत परहेज रखनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंत काल है इसलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। नंबर दो, दधीचि ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान, समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। समय की रफ्तार जितनी तेज चल रही है उसी तरह हमें भी अपना परिवर्तन करना है, पुरुषार्थ करना है। बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई उन सब प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहे, कोई भी कमी ना रहे। जहां भरपूरता में कमी है वहां माया हिलाती है। माया जीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो। सर्व प्राप्ति हो समय की रफ्तार प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन अभी से भरपूर बनो, अब नहीं तो कभी नहीं। स्लोगन है, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ साथ हो। सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।